वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी काल शंकु, दूसरा अध्याय, भाग 14। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। अनंत जोर से चीखा, सुशांत देख! लेकिन तब तक उनकी गाड़ी सड़क पर किसी चीज से टकरा चुकी थी। सुशांत लाख कोशिश करके भी टक्कर नहीं डाल पाया। एक जोर की आवाज के साथ उनकी गाड़ी कुछ डगमगाई। अगर इतनी रफ्तार में गाड़ी को रोकने की कोशिश की जाती तो गाड़ी का पलटना निश्चित था। इसलिए सुशांत ने गाड़ी सड़क से नीचे उतार दी। कुछ सेकंड की अफरा तफरी के बाद आखिरकार गाड़ी रुक चुकी थी। कुछ सेकंड तक गाड़ी में सन्नाटा छा गया। अनंत और सुशांत दोनों की सांसें तेज हो गई थी। आखिर क्या था वो? एकदम से बीच में आ गया, मैं देखता हूं। सुशांत गाड़ी से उतरने लगा। अनंत ने उसे गाड़ी से उतरने से मना किया, लेकिन जिस जगह वो फंस चुके थे वहां से गाड़ी से बाहर निकलने के लिए भी नीचे उतरना ही पड़ता। इसलिए सुशांत और अनंत दोनों नीचे उतरे। पीछे दूसरी गाड़ी भी रुक चुकी थी, जिससे ज्ञान और राज भी बाहर आ गए थे। सुशांत ने टक्कर वाली जगह का मुआयना करते हुए कहा, टक्कर के बाद उस चीज को उस तरफ जाना चाहिए। ये कहकर वो सड़क से उतर गया। उसे पता नहीं था कि वो किस चीज को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ा। इस चीज से टक्कर हुई हमारी। वहां एक मुड़ा तुड़ा ठेला उल्टा पड़ा था, जिसके पहिए अभी तक घूम रहे थे। रेहड़ी वाले, सब्जी वाले इस तरह के ठेलों पर सामान बेचा करते हैं। बस फर्क इतना था कि इसके ऊपर कुछ सामान रखकर और काले कपड़े बांधकर इसे थोड़ा बड़ा और अजीब सा लुक दे दिया गया था। सुशांत बरबस ही बोल पड़ा, पर यार ये एकदम से सड़क के बीच में कैसे आ गया? एक सेकंड पहले कुछ नहीं था, फिर अचानक से दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर इस ठेले को आती हुई गाड़ी से टकराने के लिए भेजा था। सुशांत अलर्ट हो गया, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी। चारों ओर से करीब 10-15 बदमाश हाथों में लाठी डंडे लिए उन्हें घेर चुके थे। कुछ के पास धारदार हथियार और कुछ के पास चाकू भी थे। अनंत के मुंह से निकला, बल्ली। अनंत के साथी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो इस जगह से ना तो भाग सकते हैं और ना ही इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। मगर अनंत को बस सुशांत का डर था। उसने सुशांत की तरफ देखा। उम्मीद के विपरीत सुशांत किसी तरह के विरोध करने के मूड में नहीं था। अनंत ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो हम दे देंगे, बस हमें यहां से जाने दो। पता नहीं उसकी बात का उन लोगों पर कोई असर हुआ या नहीं। बदमाशों ने उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया। अनंत उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे उनमें से किसी का भी चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा था। अनंत और उसके साथियों को एक खटारा जीप में बैठा दिया गया, बस सुशांत को छोड़कर। वो बदमाश सुशांत पर पिल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सुशांत से कोई जाति दुश्मनी हो। सुशांत के कुछ सोचने से पहले ही वो उसे निढाल कर चुके थे। अनंत, ज्ञान और राज समझ नहीं पा रहे थे कि बाहर हो क्या रहा है। हालात का अंदाजा लगाकर उन लोगों ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की। दो बदमाश उन्हें रोकना चाहते थे, मगर ज्ञान और अनंत उन पर भारी पड़े। ऐसा लगा जैसे उन बदमाशों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। अनंत भागकर वहां पहुंचा जहां वो बदमाश सुशांत पर पिले हुए थे। अनंत ने भागकर सुशांत को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनकी चपेट में आ गया। फिर जैसे किसी के इशारे पर उन बदमाशों ने मारपीट बंद कर दी। अनंत ने सुशांत को संभाला। सुशांत इस वक्त बेसुध जमीन पर गिरा हुआ था। उसने अनंत की आवाज का भी कोई जवाब नहीं दिया। अनंत चीख पड़ा और सुशांत से लिपट गया। उसने सुशांत की सांसें चेक की। सांसें चल रही थी, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने उसे थपेड़कर जगाने की कोशिश की। बदमाशों ने ज्ञान और राज को भी वहां आने दिया। अनंत पागलों की तरह सुशांत को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई थी, मरियो कोनी है, जिंदो है। उसने पलटकर देखा, यह भभूति नहीं था, लेकिन जो भी था उसके चेहरे पर रहम का नामो निशान नहीं था। उसने एक पानी की बोतल में से एक घूंट पानी मुंह में भरा और सुशांत के चेहरे पर पिचकारी छोड़ दी। अनंत गुस्से से उसकी तरफ पलटा, मगर उसने दुनाली बंदूक की नली अनंत की तरफ घुमा दी। अनंत सहम गया। तभी सुशांत के खांसने की आवाज सुनाई दी। अनंत उससे जाकर लिपट गया। थोड़ी देर बाद अनंत और उसके तीनों साथी बंधक बने जीप में कहीं ले जाए जा रहे थे। सुशांत के चेहरे पर कई खरोंचों के निशान थे। अनंत ने उसकी तरफ देखा। जवाब में सुशांत मुस्कुरा दिया और धीरे से फुसफुसाया, तूने तो बोला था मैं मर जाऊंगा। और कोई वक्त होता तो अनंत को हंसी आ जाती, मगर कुछ सोचकर वो सिहर उठा और चुपचाप रास्ते की तरफ देखने लगा। अंधेरे को चीरती गाड़ियां किसी अनजान सफर पर थीं। अनंत और उसके साथियों के मोबाइल फोन वगैरह बदमाशों ने पहले ही ले लिए थे। गाड़ी में एक अजीब सी चुप्पी छाई थी। जो कुछ उन लोगों के साथ हुआ था इस इलाके में कई बार हो चुका था। आगे क्या घटने वाला है कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। अनंत ने बीच में एक दो बार उन बदमाशों से बात करने की कोशिश की, मगर कोई उसकी बात सुनने तक को तैयार नहीं था। अनंत ने एक निगाह अपने साथियों पर डाली। सुशांत की आंखें मुंद रही थी। उसकी जगह कोई और होता तो उसका इतनी मार पिटाई झेलने के बाद होश में रह पाना भी मुश्किल था, मगर वो सुशांत था, द टफ गाय। अनंत बुदबुदा उठा। राज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। बीच बीच में उसकी आंखें आंसुओं से नम हो रही थी। और ज्ञान, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आधी रात के बाद वो एक सुनसान इलाके में बने एक गोदाम जैसी जगह में पहुंच चुके थे। बगैर कुछ बताए उन लोगों को वहां बेसमेंट में कैद कर दिया गया। अगला दिन 10 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त, दो आदमी उनके लिए खाना लेकर आए थे। मुझे भभूति से बात करनी है, अनंत ने उनमें से एक से पूछा। वो आदमी जैसे उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। अनंत ने फिर से कहा, भभूति, बाबा। दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो अब भी अनंत की बात समझ नहीं पाए थे। फिर एक ने कहा, चुप कर बावली छालर। दोनों लोग वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ सेकंड बाद सुशांत दर्द दबाते हुए हंस पड़ा। बावली छालर यार, ये अच्छी गाली है, बावली छालर। सुशांत की बात पर सभी लोग हंस पड़े। सुशांत ने आगे पूछा, ये लोग हमसे चाहते क्या है? उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सुशांत ने अनंत की तरफ देखा, तू कुछ बताएगा? एक बारगी लगा कि अनंत कुछ कहने वाला है, मगर उसने चुप्पी साध ली। सुशांत वहीं जमीन पर बिछे एक मैले कुचैले गद्दे पर लेट गया। गद्दे की बदबू की वजह से राज ने नाक भौंस से कोड़ ली, मगर सुशांत ने माहौल को हल्का करने वाले अंदाज में कहा, हम लोग इससे भी बुरी जगहों पर ठहरे हुए हैं। अरेंजमेंट तो ठीक ही है यहां पर, बस समझ ये नहीं आ रहा कि ये लोग हमें यहां क्यों लाए हैं। ज्ञान ने दिमाग लगाया, अगर लूटना होता तो ये यहां नहीं लाते। सुशांत ने कराहते हुए कहा, और पता है मुझे तो ऐसा लगा जैसे उनका टारगेट मैं ही हूं, सालों ने बहुत बुरी तरह से मारा है। सुशांत की इस बात ने अनंत का ध्यान अपनी तरफ खींचा, पर जैसे उसने ठान रखा था कि वो कुछ नहीं कहेगा, सुशांत फिर से बोल पड़ा, अनंत कहीं ऐसा तो नहीं इनको भी अपनी फिल्म बनवानी हो, इसलिए पूरी टीम को ही किडनैप कर लिया। सुशांत ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की थी, पर उसका साथ किसी ने नहीं दिया। अनंत उठकर एक तरफ चला गया और कमरे का जायजा लेने लगा। 10 फरवरी 2019 की रात, सही सही वक्त पता नहीं, मगर आधी रात बीत चुकी थी। तभी अनंत की नींद किसी आहट से खुल गई। कौन है, किस चीज की आवाज थी ये? अनंत ने अपने चारों तरफ निगाह डाली। मैले कुचैले बिस्तरों पर उसके साथ ही सोए हुए थे। सीढ़ियों के ऊपर फिर से किसी तरह की आवाज हुई। वहां सीढ़ियों पर ऊपर कोई है, लेकिन इतनी रात को, और ये? अनंत ने कुछ सूंघने की कोशिश की। बीड़ी की महक उसकी सांसों में घुलने लगी थी।
कोई बीड़ी पी रहा है, मगर कौन? यहां तो हम लोगों के सिवा और कोई नहीं है।
अनंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। बेसमेंट के कोने में सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थी। दरवाजा बाहर से बंद था, मगर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा कोई शख्स बीड़ी फूंक रहा था। उसने उसे पहचानने की कोशिश की। कुछ याद कर वो सिहर उठा, भभूति। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर एक एक सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। बीड़ी की रोशनी में उस शख्स का चेहरा फिर से चमक उठा। सुशांत, सुशांत हंस पड़ा। अनंत को कुछ सेकंड लगे पूरी बात को समझने में। पूरा माजरा समझ आते ही उसने कहा, तू यहां क्या कर रहा है? सुशांत ने जवाब दिया, बीड़ी पी रहा हूं, तू भी पिएगा? अनंत ने कुछ नहीं कहा। सुशांत ने बीड़ी का कश खींचते हुए आगे कहा, वो जो दवाइयां लेकर आया था उसी से मैंने बीड़ी मांग ली थी। अनंत को सारी बात समझ आ गई। वो नीचे उतरकर जाने लगा। सुशांत ने टोका, दारू भी मंगाई है, बस अपनी खड़ी देनी पड़ी। अब अनंत चौंक उठा, ये इन्होंने कोई होटल खोल रखा है क्या? सुशांत ने हंसते हुए कहा, पता नहीं यार, पर वो जो बंदा दवाइयां लेकर आया था वो इनके गैंग का नहीं लग रहा था। मैंने उसे ऑफर दिया और उसने मान लिया। अनंत ने कहा, तो उससे ये नहीं पूछा कि छोड़ने का क्या लेगा? सुशांत ने जवाब दिया, पूछा था, पर उसने कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुशांत अपनी ही बात पर हंस पड़ा। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, बट यार समझ नहीं आ रहा है, ये लोग आखिर हमसे चाहते क्या है? पहले तो इतनी जबरदस्त पिटाई की, फिर पेन किलर और दूसरी दवाइयां भिजवाई, और इन्हें चाहिए क्या? अभी तक नहीं बता रहे। अनंत ने हां में हां मिलाई, हां यार समझ नहीं आ रहा है। सुशांत ने पूछा, वैसे ये भभूति कौन है? सुशांत का सवाल सुनकर अनंत थोड़ा हकबका गया। सुशांत ने आगे कहा, तूने दिन में भी इस भभूति का नाम लिया था, थोड़ी देर पहले भी तूने उसका नाम लिया, आखिर कहानी क्या है उसकी, बता दे यार। नहीं कुछ नहीं। अनंत सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुशांत को पूरी बात बतानी चाहिए या नहीं। वो सोच रहा था, 10 फरवरी बीत चुकी है, इसी दिन तो हमने कौन निकाला था, पहली बार मैंने, दूसरी बार सुशांत ने, लेकिन इस बार हम दोनों यहां पर हैं तो किसी ने कौन नहीं निकाला। शायद इस बार चीजें अलग तरह से कट रही हैं। आई थिंक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, शायद हम यहां सेफ हैं। यही सब सोचता हुआ अनंत थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था कि तभी बाहर से जोर की बिजली कड़कने की आवाज सुनाई थी, और उसके बाद शुरू हो गया आंधी तूफान और बारिश का दौर। अनंत अंदर तक कांप उठा। हम दोनों यहां कैद हैं, मगर वो कौन तो अभी तक वहीं पर है, यानी खतरा टला नहीं है। मुझे सुशांत को सब बता देना चाहिए। अनंत फिर से सुशांत के पास जा पहुंचा, जो बोतल में से शराब के घूंट ले रहा था। उसे आते देख सुशांत जोर से हंसने लगा, मेरे यार राजा, पार्टी करने का इससे अच्छा एक्सपीरियंस अपने लाइफ में नहीं किया होगा। अनंत ने सुशांत से बीड़ी हाथ में ली और कश फूंकते हुए कहा, चल हंस तेरी सही। बाहर बारिश का दौर चल रहा था। इधर अनंत ने एक एक करके सुशांत को पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से बता दी कि किस तरह भभूति ने सुशांत को गोली मारी थी। सुशांत चुपचाप अनंत की बात सुनता जा रहा था। आखिर में उसने कहा, तो तू कह रहा है मैं मर चुका हूं, और वो भी दो दो बार? अनंत ने कहा, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बोतल उठाए लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया और फर्श पर बिछे गद्दे पर लेट गया। अनंत भी उसके पीछे चुपचाप आकर अपनी जगह लेट गया। 11 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त। आज 11 फरवरी है, सुशांत ने लेटे लेटे ही अनंत से पूछा। अनंत ने कहा, हाँ तो आज क्या होगा? अनंत ने उकताते हुए जवाब दिया, पता नहीं यार,
सुशांत ने अंगुलियों पर गिनते हुए कहा। 11, 12, 13, 14, 15। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 5 दिन है।
अनंत झल्ला पड़ा, क्या पागलों की सी बात कर रहे हैं।
सुशांत चुप हो गया, मगर ज्यादा देर तक चुप नहीं रहा।
वो देवता दिखता कैसा था?
अनंत को अब गुस्सा आने लगा था।
तुझे बताकर मैंने गलती कर दी, जब से उठाए माथा खाया जा रहा है।
लेकिन सुशांत चुप नहीं हुआ। अनंत, तू सच तो बोल रहा है ना? ऐसा कभी होता है भला? अनंत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा।
तुझे यकीन नहीं है मेरी बात पर?
यकीन? सुशांत ने लेटे लेटे ही पास में रखी शराब की बोतल में से एक घूंट भर ली। अनंत हिकारत से उसे देख रहा था। सुशांत ने बात बदलने के लिए कहा,
ये ज्ञान और राज कहीं दिख नहीं रहे, उनको छोड़ दिया क्या गुंडों ने?
अनंत ने जवाब दिया,
नहीं,
उनको बस 15 मिनट के लिए बाहर की हवा खाने भेजा, तू भी आ जा। सुशांत ने दिल टूटे आशिक के अंदाज में कहा,
मैं बाहर आके क्या करूंगा, वैसे भी मेरे पास बस 5।
सुशांत ने बात पूरी नहीं की। अनंत समझ नहीं पाया कि ये उसने तंज कसा है या अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया है। उसने सुशांत का हाथ पकड़ा और उठाकर अपने साथ बाहर ले गया। 14 फरवरी 2019 शाम का वक्त। पिछले 5 दिनों से वो लोग बदमाशों के चंगुल में थे। उन लोगों को अब तक यह समझ नहीं आया था कि ये लोग इनसे चाहते क्या हैं। अनंत को पहले लगा था कि ये बल्ली कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। यहां मौजूद बदमाश उनकी बातों का ज्यादा जवाब नहीं दे रहे थे। उनका बस यही कहना था कि वो अपने बॉस के कहे मुताबिक काम कर रहे हैं, और उनका बॉस, वो तो पहले दिन के बाद से दिखाई ही नहीं दिया था। लेकिन इस सबके बीच अनंत ये सोचकर खुश था कि वो काल शंकु के संपर्क में आने से बच गया है। बस एक दिन बाद वो इस पूरे झमेले से बाहर आ जाने वाले थे।
लेकिन सब कुछ वैसे थोड़ी नहीं होता है जैसा सोचा जाता है।
सुशांत इस वक्त कपड़े के चीथड़ों से बनी गेंद से राज और ज्ञान के साथ खेल रहा था। सुशांत ने अनंत की बताई कहानी राज और ज्ञान को भी बता दी थी, लेकिन इन 5 दिनों में एक जगह फंसे होने की वजह से उस कहानी पर उन लोगों का यकीन नहीं बन पाया था। खैर, उस कहानी के बारे में कोई बात नहीं किया करता था। वो लोग इस वक्त गोदाम में बने एक बड़े से हॉल में थे। पिछले 5 दिनों में उन पर लगी बंदिशें काफी हद तक कम हो गई थीं, लेकिन बाहर जाना उनके लिए अब भी मुमकिन नहीं था। शायद इस इलाके में मोबाइल फोन का नेटवर्क भी मुश्किल से मिला करता था, क्योंकि उन्होंने किसी को भी मोबाइल पर बात करते नहीं देखा था। शाम को ही 7 बजे का वक्त था, तभी बाहर से एक मोटरसाइकिल के आने की आवाज आई। आवाज से लग रहा था जैसे मोटरसाइकिल सवार बड़ी जल्दी में था। वाकई में वो जल्दी में ही था। आते ही वो चिल्लाने लगा,
पुलिस, पुलिस, भागो।
ये सुनते ही वहां जैसे हलचल मच गई। उन सबको एक एक करके बंदूक की नोक पर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाने लगी। लेकिन वहां कोई था जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 14। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस। दोस्तों, मैं दीपक मेड़तवाल वो कहानियां शो का राइटर नरेटर। कहानी को लेकर आप लोगों के फीडबैक मुझे मिलते रहते हैं। आपका एनकरेजमेंट, आपके सजेशंस और आपकी शिकायतें सभी मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। आज मैं आपके साथ आपकी सबसे कॉमन शिकायत के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आप इसे कई लिसनर्स ने कहा कि कालचंकु कहानी के एपिसोड्स काफ़ी देरी से आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। इस फरवरी में वाकई में एपिसोड टाइम पर नहीं आ पाए हैं, उसके कुछ कारण भी हैं। ये फरवरी सही में बहुत हैक्टिक रहा है, कुछ जॉब रिलेटेड वर्कलोड, कुछ फैमिली फंक्शंस और कुछ वायरल फीवर। कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं बन पाई। कैसे बताऊं, शायद मैं भी कालचंकु के नायक अनंत की तरह वक्त में फंसा हुआ हूं। हर बार सोचता हूं कि इस बार एपिसोड टाइम पर डालूंगा, मगर फिर जिंदगी नाम का टाइम लूप फिर से वहीं पहुंचा देता है जहां पहले था। शायद यही मिडिल क्लास लाइफ है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि इस बार चीज़ों को कंट्रोल में कर लेंगे, मगर फिर पता लगता है कि यहां तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया है। जो सोचा था वो होता ही नहीं है। आज से कुछ साल पहले मैं मीडिया में जॉब कर रहा था, मगर फिर कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि मुझे ना चाहते हुए भी मीडिया से ब्रेक लेना पड़ा। फिर चीजें छूटती चली गईं। हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करते करते कई बार लिखने में इतना ब्रेक आ जाता है कि मुझे खुद को एक बार फिर से पूरी कहानी को समझाना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये कहानी अधूरी तो नहीं रह जाएगी। कभी लैपटॉप साथ छोड़ देता है, कभी माइक। मगर एक अच्छी बात बताऊं, मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो मुझे पुश करते हैं कहानी पूरी करने के लिए, और फिर मेरे अंदर का अनंत जाग उठता है कि नहीं, ये प्रारब्ध मुझे मंजूर नहीं है, मैं इस कहानी को पूरा करके रहूंगा। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि इस कहानी पर फिल्म बननी चाहिए, तो आज मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मैंने फिल्म के हिसाब से ही लिखी थी, बस कहानी सही जगह पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन अगर वक्त ने चाहा तो इस पर फिल्म जरूर बनेगी। खैर, बातें काफ़ी सारी हैं, मगर अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मार्च में काल शंकु के एपिसोड्स रेगुलर टाइम पर आएंगे, और आप सभी लिसनर्स का सपोर्ट इसी तरह बना रहेगा। थैंक्स। सुनते रहिए वो कहानियाँ।